पृष्ठ संख्या 162, अध्याय 18, छंदोबद्ध साहित्य, शायरी और तबले की रचनाएं। जब मनुष्य को ज्ञात हुआ कि स्वर, वर्ण और लय के मधुर मिलन से मनुष्य के मन में उद्भूत भाव पूर्णतः व्यक्त हो सकता है, तब से लेकर साहित्य और संगीत कला का विकास होता आ रहा है। सुबद्ध अर्थवाही शब्दों, उनके लिए अनुरूप छंदों और उदात अनुदात स्वरों की सहायता से वैदिक संहिता की निर्मिति हुई। ध्रुपद गायन शैली की बंदिशों का बीज रूप इस संहिता में निहित है। पंडित नाद कशालकर जी अपने साहित्य और संगीत शीर्षक लेख में कहते हैं, वेदांची पाठ पद्धति अत्यंत बांधीव असल्या मूले, प्रत्येक ऋचा हे एक ध्रिपद च असते। वेदों के पाठ पद्धति अत्यंत सुबद्ध होने से प्रत्येक ऋचा एक ध्रिपद ही होता है। आगे चलकर वे कहते हैं, वर्णाम पासून शब्दांची घण होत असते, आणी त्या मूले प्राथमिक अलंकार हे शब्दाश्री बनले, म्हणून साम गायनातील शब्दांची त्यातील काही वर्णांची आवृत्ती व्यावृत्ती करून यमक प्रास अनुप्रास इत्यादी। साहित्य कृती जन्मल्या तर स्वरांचया आवृत्तीने आलाप तान यांचा प्रादुर्भाव झाला। वर्णों से शब्दों का गठन होता है, फलतः प्राथमिक अलंकार शब्दाश्रय बन गए। इसीलिए साम गायनों में शब्दों एवं स्वरों की पुनरावृत्ति प्राथमिक है। शब्दों की उनके कुछ वर्णों की आवृत्ति व्यावृत्ति के जरिए यमक प्रास अनुप्रास इत्यादि साहित्य अलंकार पैदा हुए, तो स्वरों की आवृत्ति से आलाप तान आदि का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण कंठ संगीत काव्यमय होता है, गीत के माध्यम से उसे पेश किया जाता है। गीत में शब्द और भाषा का प्रयोग होने से हमें शब्दालंकार और अर्थालंकार का प्रयोग भी सुनने को मिलता है। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो सजाता है वह अलंकार है। सौंदर्य की पूर्ति और गुणों की समृद्धि हम जिस माध्यम से करते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार अपनी कला की अभिव्यक्ति अलग अलग माध्यमों से या आकृति बंध निर्माण करके प्रस्तुत करता है। वर्णों से शब्द बनता है। साम गायन में शब्दों और स्वरों की पुनरावृत्ति हम देखते हैं। पृष्ठ संख्या 163। अलंकार का प्रयोग बुद्धि और भावना को आवाहित करने के लिए होता है। भाषा और साहित्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शब्दालंकार से शब्द चमत्कृति, पद्य चमत्कृति पैदा होती है। संगीत में कोई भी रचना या बंदिश लयबद्ध रूप में ही प्रस्तुत होती है। यह लयबद्धता हमें शब्दों के उच्चारों से, उनसे निर्मित नादों से और उन शब्दों और नादों से बनी हुई रचना कृति से प्रतीत होती है। संगीत रचना के प्रस्तुतीकरण का कवच उसका ताल ठेका होता है। इसीलिए गायन में जो शब्दालंकार दिखाई देते हैं वे कभी कभी हमें ताल वादन में भी प्रतीत होते हैं। भाषा साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण अलंकार अर्थालंकार होता है, लेकिन तबला वादक अपने वादन में अर्थालंकार का प्रयोग कर नहीं पाता, क्योंकि अर्थालंकार के प्रयोग के लिए प्रगत मानवी भाषा की जरूरत होती है और तबला या मृदंग इस भाषा का प्रयोग करने में असमर्थ है। गीत गायन में जो लयबद्ध प्रयोग होता है उसका आकर्षण पखावज वादकों तबला वादकों को होता है, इसलिए तबला या पखावज के वादन के लिए उन्होंने अपनी खुद की एक भाषा बनाई। इस भाषा का उद्देश्य अगर सिर्फ ताल का ठेका बजाने या लय बताने तक ही मर्यादित होता तो शायद तबले की भाषा तो अस्तित्व में आती किंतु काव्यमय साहित्य का निर्माण न हो पाता। अब हम गद्य और पद्य संकल्पनाओं के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करके पद्य और तबले की बंदिशों के संबंध के विषय में विवेचन करेंगे। गद्य। दैनंदिन भाषा में हम गद्य को पाते हैं। पूर्ण अर्थ ज्ञात हो इस उद्देश्य से गद्य के जो खंड बनते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। इन वाक्य की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी अक्षर रचना कैसी होनी चाहिए, वाक्य में अक्षरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसमें लघु गुरु इत्यादि का क्या क्रम होना चाहिए, इस बारे में न ही कोई बंधन होता है न कोई नियम। सिर्फ अर्थ की तरफ ध्यान देते हुए जगह जगह पर कम या ज़्यादा विराम लेते हुए हम जिस तरह से बातें करते हैं उस तरह से बोलने या लिखने का मतलब है गद्य। कभी कभी स्वर में किंचित उतार चढ़ाव का प्रयोग गद्य में होता है। पृष्ठ संख्या 164। पद्य। पद्य में जो खंड पाद या चरण बनते हैं वे सब नियमित अंतर के बाद आने वाले विराम स्थल होते हैं। जिस रचना में चरण में आने वाली अक्षर संख्या तथा अक्षरों की लघु गुरु मात्राएं आदि के बारे में नियम निर्धारित होते हैं उसे पद्य कहा जाता है। गद्य की ही तरह पद्य में भी अर्थ का महत्व होता है, लेकिन अर्थ के साथ ही ध्यान प्रधानतः लय में केंद्रित रहता है और उसके प्रस्तुतिकरण में निश्चित जगह पर निश्चित काल का विराम लिया जाता है। छंद शास्त्र पद रचना का व्याकरण होता है। पद्य काव्य का शरीर होता है। इसका प्रमाणबद्ध लयबद्ध और सुंदर होना बहुत जरूरी है, लेकिन पद्य की आत्मा उसमें निहित भावार्थ होता है। पद्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, पद्य अर्थ सहित शब्दावली होती है। दूसरा, पद्य रचना चमत्कृति पूर्ण होती है। तीसरा, अंतर्गत लयबद्धता के कारण यह रचना बहुत ही आसानी से कंठस्थ होती है और वह दीर्घ काल तक स्मरण में रहती है। चौथा, पद्य में प्रयुक्त नादमय शब्दों से नियमित रमणीय और आवर्तनबद्ध आंदोलन पैदा होते हैं और उनसे सौंदर्य निर्माण होकर श्रोताओं को आनंद प्राप्त होता है। पांचवा, पद्य में निहित उचित लयबद्धता भावनाओं को उत्तेजित करने में सहायक होती है। तबला वादन में भाषा के निर्मिति और विकास। पुराने जमाने के पखावज वादक और तबला वादक सिर्फ पखावज वादक या तबला वादक ही नहीं थे, बल्कि साहित्य के और विशेषतः काव्य के रसिक भी थे। तबले पर और बाएं पर ताल बजाने और लय को प्रस्तुत करने के लिए चौघड़ा, ताशा, ढोल, ड्रम जैसे वाद्य भी शायद काम आ सकते थे, लेकिन संगीत में राग, गायन प्रकार, विविध रचनाएं और उनका विस्तार करने की प्रक्रिया आदि की दृष्टि से जो विकास हुआ वैसा ही विकास साध्य करने के लिए संगीत की गति के साथ बराबरी से चलने का प्रयास पखावज वादकों और तबला वादकों ने किया। फलतः इन विद्वान और प्रतिभावान कलाकारों ने विविध स्वरमय ध्वनियों की निर्मिति करने का सफल प्रयोग किया। तबला एक सुरा वाद्य होने से उससे विविध स्वरयुक्त रचना का प्रस्तुतिकरण किया जाना असंभव है, इसलिए तबले और बाएं में पृष्ठ भाग पर एक या अनेक उंगलियों से या हाथ से अलग अलग जगह पर आघात करके एक या अनेक संयुक्त ध्वनियों की निर्मिति द्वारा ध्वनि विविधता पैदा की जाती है। पृष्ठ संख्या 165। और हर अलग अलग ध्वनि को वाणी की भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। इन ध्वनियों को तबले के अक्षर या वर्ण के नाम से पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए कुछ वर्ण इस प्रकार हैं: ता, ना, ती, र, गे, घे, कत, धी, ट इत्यादि। इन वर्णों की मदद से ही ताल के ठेके बन गए। ठेकों में अधिकांश में एक एक अक्षर या वर्ण का ही उपयोग होता है। इन वर्णों से शब्द कैसे बने, इसके बारे में लिखित रूप में कुछ भी ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस संबंध में सोच विचार करके निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, ध्रुपद धमार शैली में पखावज का ठेका बहुत ही कम समय के लिए बजाया जाता है और जल्दी ही ठेका भरी शुरू हो जाती है। यह ठेका भरी गायक की गायन शैली के अनुसार बढ़ती जाती है। पुरानी किताबों में ध्रुपद धमार के ठेका भरी को परन कहा जाता था। ठेका भरी के प्रयास में संभवतः अक्षरों को जोड़कर उनके शब्द बन गए होंगे। ये शब्द निश्चय ही हाथ और उंगलियों की बजाने की सुविधा को मद्देनजर रखकर ही बनाए गए होंगे। दूसरा, वादक ने पखावज या तबले के माध्यम से अपनी लय को प्रभावी ढंग से दर्शाने के लिए विविध वर्णों को संगठित करके उसका प्रस्तुतीकरण किया होगा और इस प्रकार के फलस्वरूप अच्छे अच्छे शब्द बनते गए होंगे। तीसरा, यह तो जानी हुई बात है कि गायन या वाद्य वादन में तिस्र, चतरस्र आदि 5 जातियों का प्रयोग होता आ रहा है। इन जातियों को अपने ताल वाद्य में प्रदर्शित करने के लिए नए नए शब्दों की निर्मिति करना प्रतिभाशाली वादनकारों के लिए एक चुनौती हो गई होगी और हाथ एवं उंगलियों की निकास की शास्त्रीय क्षमता तथा इन शब्दों से निर्माण होने वाले नादों को ध्यान में रखकर जो शब्द बने वे आगे चलकर प्रचलित हो गए होंगे। चौथा, संगीत में सम सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। सम पर आने के लिए गायक और वादक मुखड़ा, तान, मुरकी, तिहाई इत्यादि का प्रयोग करते हैं और उसी ढंग से सम पर आने के लिए प्रयत्नशील तबला संगतकारों ने नए शब्द प्रयोग से युक्त रचनाओं की निर्मिति की होगी। पांचवा, ख्याल गायन के उदय से प्रतिभावान तबला वादकों को अपने वादन की साथ संगत संयम के साथ करने में दिक्कत होती थी। वे शायरी साहित्य के शौकीन थे, फलतः उन्होंने उर्दू शेर जैसी 2 पंक्तियों वाली रचनाएं तैयार की होंगी और उन्हें कर्ण मधुर बनाने के लिए नए शब्द निर्माण किए होंगे। पृष्ठ संख्या 166। छठवां, अलग अलग शब्दों की संधि द्वारा नए नए शब्द भी बने होंगे। सातवां, काव्य के प्रभाव से रचनाकार अपनी रचना में यमक, काफिया, रदीफ, तुक का प्रयोग किया होगा और उसे प्रभावी बनाने के लिए अंत्यपदी स्वरमय शब्द बने होंगे। ऐसे अक्षरों और शब्दों को निम्नांकित 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनके विषय में तबले की भाषा शीर्षक अध्याय में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। पहला, स्वरमय अक्षर शब्द। धा, धिन, ता, तिन, गे, घे, धिन, गिन, धागेन इत्यादि। दूसरा, स्वरमय अंत्यपदी शब्द या सहायक स्वरमय क्रियापद। धीनागेन, धागे धीनागेन, धीन धीनागेन, धाधा दिन्ना इत्यादि। तीसरा, व्यंजन अक्षर या शब्द। तिट, तिरिकिट, त्रक, कत, धीर धीर इत्यादि। चौथा, व्यंजन प्रधान शब्द। धातिट, धातिरिकिट, घेनातीत धात्रक घिड़नग धाति इत्यादि। तबला बजाने वाले को कुछ खास शब्दों की आवश्यकता आ पड़ी तो उसे पूरा करने के लिए नए शब्द बने होंगे। पेशकार, कायदा, गत, टुकड़ा इत्यादि वादन के जो अलग अलग अंग निर्माण हुए उनका विकास करने के प्रयत्न में उनके अनुरूप भाषा बनी गई होगी। तबला वादन में पद्य की निर्मिति और विकास। अभी तक हमने अक्षर, शब्द और भाषा की निर्मिति एवं विकास के बारे में विचार किया। अब हम तबला वादन करते समय पद्य की निर्मिति कैसे हुई इस बारे में विचार करेंगे। पहला, तबले का ताल निश्चित मात्राओं का एक वृत्त होता है। तबले का ठेका इसी वृत्त में बनता है और बजाया जाता है। पद्य रचना के सब चरण समान मात्रा के होते हैं, इसी कारण तबले का ठेका बार बार बजाने से वह पद्य के चरण का रूप लेता है और सुनने वाले को ठेका पद्यमय प्रतीत होता है। दूसरा, रचनाकारों ने ताल के अंतर्गत जो रचनाएं बनाई वे सब ताल के मात्रा काल के अनुसार होती हैं। इसे हम आवर्तन या आवृत्ति भी कह सकते हैं। पद्य में नई आवृत्ति की पहचान सहज एवं स्पष्ट रूप में ही हो, इसलिए चरण के आरंभ या अंत में कुछ खास शब्द प्रयोग करते हैं। इसे पद लालित्य भी कहते हैं। इस तबले की इस काव्य विशेषता का एक उदाहरण देखेंगे। धातृकिटतक धृढ़िरकिटतक धातृकिटतक तुन्नाकिटतक। इसमें धा के भरी के अक्षर से चरण का आरंभ होता है और तुन्नाकिटतक खाली युक्त शब्द से चरण के अंत का इशारा मिलता है। तीसरा, एक ही व्यंजन स्वर या शब्द रचना में दो या अधिक बार आता है, उसे काव्य में अनुप्रास अलंकार के नाम से पहचाना जाता है। अगर इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में अनुप्रास के रूप में होता है तो काव्य की प्रतीति अधिक स्पष्टता से होती है। तबले में इसका उदाहरण इस प्रकार है। धागे तकीट धागे तीरकीट धात्रक धीकीट कत गदीगन। चौथा, केवल एक अक्षर की जगह एक से अधिक अक्षरों की आवृत्ति किस रचना की पंक्तियों में नियमितता से चरणों के अंत में जब बार बार होती है तब उसे तुक रदिफ कहते हैं। तुक चरण के आरंभ में या अंत में भी आ सकता है। चार पंक्तियों की पद्य रचना में तुक पहले और तीसरे चरण में आता है और बहुतांश में वह दूसरे और चौथे चरण में आता है। पेशकार या कायदा जैसी विस्तारक्षम रचना में नियम और संकेत के अनुसार तुक खाली भरी के रूप में दो चरणों में आता है। वस्तुतः यह एक ही चरण की रचना होते हुए भी वह दो चरणों की भासमान होती है और इसमें हमें अंत्य पद यमक की अनुभूति होती है। जैसे धाधातीत धाधादिन्ना तातातीत धाधाधिन्ना। पांचवा, तबला वादक जब रचना का विस्तार करता है तब खाली भरी से निर्मित दो चरणों वाले कायदों को चार चरणों के पलटे में रूपांतरित करता है। उस समय वह पहले और तीसरे चरण के अंत में और दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुक का प्रयोग करके सुनने वाले को काव्यानुभव का आनंद प्रदान करता है। तबले की भाषा और मानवी भाषा में बहुत फर्क है। तबले की भाषा मानवी भाषा जैसा अर्थानुभव लोगों को नहीं दे पाती। तबले में पैदा होने वाली काव्य शक्ति उचित नाद माधुर्य, सुसंवादी शब्द प्रयोग, वादक के हाथ की मिठास, चाट की नादमयता और बाएं का नाजुक घुमारा आदि के कारण होती है। इन सब चीजों के समन्वय के साथ लयबद्ध रूप में निश्चित मात्रा काल में जब प्रस्तुतिकरण होता है तब अनुप्रास और तुक के कलात्मक प्रयोग से पूरी रचना काव्यमय बन जाती है। जैसे धा धातिट धाधातिट तिट धाधातिट धातिट धातिट धाधातिट धागे तीन किन ताके तीना किन ताता तीत तीत धाधा तीत धातीत धातीत धाधा तीत धागे धीना केना। पृष्ठ संख्या 168। ऊपर की रचना में पहले और तीसरे चरण के अंत में तीत धाधा तीत, दूसरे और चौथे चरण के अंत में धागे धीना गेना और दूसरे चरण के अंत और तीसरे चरण के आरंभ में धागे धीना गेना शब्दों की कलात्मक पुनरुक्ति से रचना की काव्यमयता प्रतीत होती है। ध्यान दें, खाली भरी के नियम के कारण तबले में तुक के शब्दों के प्रयोग में थोड़ा सा फर्क होना तो अनिवार्य ही है। छठवां, लय के अनुसार जब हम पद्य को पढ़ते हैं तब वहाँ विशिष्ट जगह पर कम या ज़्यादा समय रुकना अनिवार्य होता है। ऐसे विराम से काव्यानंद बढ़ता है। उक्त विराम को यति कहा जाता है। यति के स्थान पर पद्य पंक्ति का विभाजन हो जाता है। तबले में यति या विराम निश्चित काल का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि यति के साथ बजाई गई रचना लयबद्ध रूप में निश्चित मात्रा काल में पूर्ण होनी चाहिए। विस्तारक्षम रचना में खंड के अंत में विराम ले सकते हैं। अजराड़ा बाज में कुछ अक्षर शब्द जल्द गति में बजाकर विराम लिया जाता है। कभी कभी कुछ शब्द थोड़ी सी विलंबित लय में बजाकर विराम लेते हुए आगे के शब्द द्रुत लय में बजा के रचना पूरी की जाती है। कभी कभी गूंज युक्त अक्षरों की गूंज बढ़ाकर विराम लिया जाता है, लेकिन यह यति या विराम और तिहाई या चक्रधार गत के अंत में लिया जाने वाला विराम दोनों संकल्पनाएं अलग अलग है। यति भेद की संकल्पना से तबले में लय या जाति बदल भी सकती है। पृष्ठ संख्या 169। पद्य और तबले की शायरी की तुलना। काव्य भाषिक काव्य का कोई अर्थ होता है। तबला काव्य तबले के रचना काव्य का कोई भाषिक अर्थ नहीं होता, किंतु कलात्मक अर्थ होता है। काव्य में भावना महत्वपूर्ण होती है। तबला काव्य में मानवीय भावना व्यक्त करना तबले के काव्य का हेतु नहीं है, किंतु उचित नाद ध्वनि जोरदारपन नजाकत गति की विविधता आदि के माध्यम से तबला गीत की रस भाव निर्मिति में सहायता पहुंचाता है। काव्य भाषिक काव्य में शब्द चमत्कृति होती है और शब्दालंकारों का उपयोग प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाता है। तबला काव्य तबले में भी शब्द चमत्कृति महत्वपूर्ण अंग है। तबले के काव्य में प्रास अनुप्रास अंत्यानुप्रास आदि शब्दालंकारों के साथ यति का सातत्य के साथ उपयोग होता है। काव्य काव्य में बौद्धिक शक्ति एवं कल्पना शक्ति होती है। तबला काव्य तबले में भी बौद्धिक शक्ति और कल्पना शक्ति विद्यमान होती है। काव्य काव्य के विचार लयबद्ध रचना के माध्यम से व्यक्त होते हैं। तबला काव्य तबले की रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया विचार भी लयबद्धता के द्वारा व्यक्त होता है। अब हम गत टुकड़ा जैसी पूर्ण संकल्पित अविस्तारक्षम रचनाओं के विविध प्रकारों और उनमें निहित काव्य तत्वों के बारे में अलग अलग दृष्टि से विचार करेंगे। साहित्य में भाषा जितनी मात्रा में समृद्ध एवं अलंकारिक होती है उस मात्रा में हम उस साहित्य को काव्यमय मानते हैं। अच्छे अच्छे साहित्य में नायक या नायिका का स्वागत इतना भावपूर्ण और शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों से भरा हुआ होता है कि उसे हम गद्य काव्य के नाम से संबोधित करते हैं। पृष्ठ संख्या 170। गद्य काव्य में वृत्त या छंद का प्रयोग नहीं होता, लेकिन प्रास, अनुप्रास, यति आदि से युक्त शब्दों के कलात्मक प्रयोग और मुख्यतः समृद्ध भाषा के समर्थ प्रयोग से इस प्रकार के गद्य को काव्य ही माना जाना चाहिए। जब तबले का रचनाकर्ता अपनी बंदिश की रचना में ताल, ठेका, उनके खंड, खाली भरी आदि का जितनी अधिक मात्रा में प्रयोग करता है, उसी मात्रा में वह रचना पद्यमय काव्य बन जाती है। लेकिन अगर रचनाकार खूबसूरत भाषा में केवल ताल के आवर्तनों में बंदिश रचता है, तो ऐसी रचना गद्य काव्य ही कहलाएगी। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जिस भाषा का प्रयोग उक्त रचना में किया गया है, अगर वह रचना छंदबद्ध, लयबद्ध, अनुप्रास तथा अनुस्वार युक्त शब्दों का कलात्मक प्रयोग से उत्कृष्ट रूप में बनाई गई हो, तो वह पद्य काव्य का एक आदर्श नमूना बन जाती है। लेकिन सिर्फ ताल में रची हुई रचना अत्यंत सामान्य भाषा के जरिए सम पर आती हो, तो उसे गद्य काव्य नहीं माना जा सकता। लेकिन निश्चित मात्रा संख्या, गण आदि का पालन न होने से उस रचना के चरणों की संख्या यदि संबद्ध नहीं होती और उसमें अंत्य पदी तुक का इस्तेमाल भी नहीं होता, तो ऐसी रचना को हम पद्यमय काव्य नहीं मान सकते। उपर्युक्त स्पष्टीकरण से मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि गद्य काव्य या पद्य काव्य में से कोई एक श्रेष्ठ है। काव्य एक कला है, सबको आनंद दे ऐसी बंदिश की रचना करना महत्वपूर्ण है। उस बंदिश का माध्यम आवश्यकता अनुसार गद्य काव्य या पद्य काव्य, इसमें से कोई भी क्यों न हो। गत टुकड़ा जैसे प्रकारों में साधारणतः गत में हमें अति सुंदर काव्य की अनुभूति होती है। उसका कारण यह है कि गत रचना में शब्द संगति, शब्द लालित्य, स्वरमय आवर्तनात्मक आंदोलन, अनुप्रास का कलात्मक प्रयोग, उसके चलन की संबद्धता एवं लयबद्धता तथा प्रासंगिक तुक का प्रयोग, इन सब गुणों का न्यूनाधिक मात्रा में इस्तेमाल करके गत बनती है। किसी भी गत में उपर्युक्त गुण जितनी ज्यादा मात्रा में होती है, उसी मात्रा में गत ज्यादा काव्यमय एवं सुंदर लगती है। अगर कोई रचनाकार तबले में नई रचना बनाना चाहता है, तो उसको छंद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और तबले में बनी हुई विविध रचनाओं के स्वरूप का काव्य की दृष्टि से उसका अध्ययन होना चाहिए। इसी तरह तबले की भाषा पर भी रचनाकार का प्रभुत्व होना चाहिए तथा उसकी प्रतिभा उचित रूप में जागृत होनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 171। जिस रचना में जाति के अनुरूप अच्छी तरह से शब्द प्रयोग होता है, वह रचना सुखकारक होती है। शब्द और संयोगी शब्दों को गलत जगह पर तोड़कर अगर कोई रचना बनती है, तो वह असुंदर लगती है। टुकड़ा, मुखड़ा, मोहरा आदि वादन प्रकार पद्यमय नहीं होते, लेकिन आदर्श शब्द मधुर भाषा के प्रयोग से वही रचना काव्यमय भासमान होती है। तबले के प्रगत विद्यार्थी को, मतलब पदवी और पदव्युत्तर परीक्षा के विद्यार्थी के लिए इस विषय का गहरा अध्ययन करना जरूरी है। सुंदर रचना में सुंदरता का प्रयोग कहाँ और कैसे किया गया है, इसका ज्ञान विद्यार्थी को होना जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए हर रचना का सब दृष्टियों से अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे अध्ययन से वे तबले के केवल व्याकरण का अध्ययन करना छोड़कर एक सुंदर कला के रूप में तबला वादन का अध्ययन कर लेंगे। तबला वादन को एक प्रायोगिक कला मानकर उस दृष्टि से अगर विद्यार्थी उसका अध्ययन करेगा, इस कला में प्रतीत होने वाले सौंदर्य तत्व की पहचान कर लेगा। इस सौंदर्य तत्व का प्रयोग कैसे और कब किया जाता है, इसका अध्ययन करते हुए उस पर चिंतन मनन करेगा और इन सब बातों को मद्देनजर रखकर तदनुरूप अपना रियाज करेगा, तो वह विद्यार्थी निस्संदेह एक अच्छा कलाकार अवश्य बन सकेगा।